जिस प्रकार से भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, उसी प्रकार से जो भगवान के महान भक्त है, जो इस प्रकार के से विशेष करके जो षट गोस्वामी हैं और प्रभुपाद जी हुए, ऐसे अनंत भक्तगण हुए, सबके जन्म और कर्म दिव्य है एक्चुअली। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में हम थोड़ा उनकी जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद उन्होंने किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार वृंदावन गए और किस प्रकार से उन्होंने राधा रमन जी के प्राकट्य कराया और उसके बाद उन्होंने किस प्रकार से वृंदावन में अपना जीवन यापन किया, इसके बारे में हम थोड़ा से चर्चा करेंगे। और विशेष करके गोस्वामियों का मैं पिछले भी क्लास में बता रहा था, पिछले क्लास जो था वो पूर्णिमा के दिन था और उस दिन क्या था, सनातन गोस्वामी पाद का डिसेंडेंस है। हम लोग का सौभाग्य कि हम अष्टकम कर रहे हैं और दो गोस्वामी के बारे में हमने सुन लिया है, आज दूसरा गोस्वामी, ऐसा कर करके हम छह गोस्वामी के बारे में सुनेंगे और सबके पास टाइम में बहुत दिव्य है एक्चुअली। तो और विशेष करके इन छह गोस्वामियों के बारे में अगर हम सुनेंगे किस प्रकार से इन्होंने जीवन यापन किया, किस प्रकार से इन्होंने जीवन यापन किया, कितनी सरलता से जीवन यापन किया, और उसको अगर हम श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो प्रेम है कृष्ण के प्रति ना, वो उसमें गाढ़ता आएगा, है ना, गाढ़ता आएगा। तो उनके जीवन के बारे में कोई भी भक्त हो एक्चुअली, जो भी विशेष करके भगवान के जो पार्षद हैं, जैसे कि गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये भी भगवान के नित्य पार्षदों में से एक पार्षद हैं। तो इन भक्तों का कथा, उनके जीवन को अगर सुनते हैं तो निश्चित रूप से हम भक्ति मार्ग में प्रगति करते हैं, हम तीव्रता से प्रगति होता है। इसलिए मैंने अष्टकम का इसलिए शुरुआत करेंगे क्योंकि हमको उसी को अपने जीवन में उतारना है एक्चुअली। इन गोस्वामियों का ही जीवन, जो उन्होंने किस प्रकार से जीवन जिया है, उसको अपने जीवन में उतारना है। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात, है ना, संन्यास लेने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पे निकले, है ना, अपने बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने दक्षिण भारत यात्रा के लिए निकल पड़े। तो दक्षिण भारत यात्रा जब के निकले, जब दक्षिण भारत में विशेष करके श्रीरंगम में, रंगनाथ के क्षेत्र में जब पहुँचे श्री चैतन्य महाप्रभु, तो वहाँ पे जैसे ही वो पहुँचे तुरंत चतुर्मास का समय, चतुर्मास शुरुआत हो गया। जैसे ही वो श्रीरंगम पहुँचे उसी समय चतुर्मास शुरुआत हो गया। तो चतुर्मास में जो साधु संघ होते हैं वो कहीं भ्रमण कर नहीं करते, बंद कर देते हैं, है ना, वो चार मास के लिए, इन चार महीनों में ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में कि भगवान शयन करते हैं। इसलिए साधु संघ एक जगह स्थिर रह के अपने भक्ति और साधना को बढ़ाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु हालांकि भगवान थे लेकिन किस रूप में थे, भक्त के रूप में थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जब श्रीरंगम में पहुंचे तो वहां पे जब चतुर्मास प्रारंभ हो चुका तो उन्होंने सोचा कि अभी हमको एक जगह पे निवास करना चाहिए चार महीने तक। तो वहां पे एक बहुत विद्वान पंडित वेंकट भट्ट जिनका नाम था, जो कि श्रीरंगनाथ जी के पुजारी सेवा में लगे हुए थे, हाँ, पुजारी सेवक थे वो। तो वेंकट भट्ट जो पूजा सेवा में लगे हुए थे, उन्होंने उनको जैसे ही पता चला कि श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम में पधारे हैं, आए हुए हैं दक्षिण भारत की यात्रा में, तो तुरंत ही उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को जाकर मिले। और किस आशा से मिले, क्योंकि वो भी जानते थे कि अभी चतुर्मास का समय प्रारंभ हो चुका है और चैतन्य महाप्रभु अभी इसी श्रीरंगम क्षेत्र में है, तो इसका लाभ हमको लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत प्रचंड विद्वान थे और साथ साथ में भगवान के बहुत बड़े भगवान विष्णु के भक्त थे वो। तो इस प्रकार से वेंकट भट्ट ने क्या किया, चेतन महाप्रभु को जाके प्रणाम किया और उनको रिक्वेस्ट किया, प्रभु आप चार महीना आप हमारे घर पे रहिए, चतुर्मास प्रारंभ हो चुका है, आप चार महीने तक हमारे घर, हमारे ऊपर कृपा करिए, आप चार महीने तक हमारे घर पे आप रहिए। और रंगनाथ वेंकट रंगन श्रीरंगम कोई गया है, कोई नहीं गया, आप गए ना। तो श्रीरंगम मंदिर के बाहर वाला जो परिक्रमा मार्ग जैसा है उस रोड पे वेंकट भट्ट का घर है, आज भी उनका घर है और उनका जो छोटा सा मंदिर है वहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी है, तो आज भी मंदिर है, उनका घर आज भी है और उनके जो परंपरा के लोग आज भी वहाँ पे है और श्री रंगनाथ की सेवा में वो है आज भी वो। तो वेंकट भट्ट ने बहुत कृपा याचना की चैतन्य महाप्रभु का उनको कि आप चार महीने तक हमारे घर में रहिए, प्रभु कृपा करिए हमारे ऊपर। इस प्रकार की नम्रता को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके इस रिक्वेस्ट को उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने विचार किया कि ठीक है मैं श्री वेंकट के घर पे 4 महीने तक रहूँगा ऐसा। तो अभी चैतन्य महाप्रभु ने हाँ बोला और उसके बाद वेंकट भट्ट बहुत खुशी खुशी उनको लेके गए अपने घर पे। और वेंकट भट्ट का एक पुत्र था जिसका उम्र था 7 साल, 7 साल का बालक था जिनका नाम गोपाल भट्ट, जो आगे चल के क्या बने, गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो वेंकट भट्ट का ये जो पुत्र गोपाल बहुत छोटा बालक था, लेकिन जब ये चैतन्य महाप्रभु उनके घर में रहने लगे तो ये गोपाल जो है उनको उनके उनके साथ में ही रहता था। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब रंगनाथ जी का दर्शन करने जाते तो साथ में जाता था, चैतन्य महाप्रभु जब गंगा स्नान के लिए, वहाँ पे शायद कावेरी है, तो स्नान करने के लिए जाते थे तो वहाँ पे भी वो साथ में जाता था। जिधर भी चैतन्य महाप्रभु जाते थे श्रीरंगम क्षेत्र में, वो साथ साथ में ही रहता था। और धीरे धीरे यह बालक जो है ना चैतन्य महाप्रभु से बहुत आसक्त होने लगा, धीरे धीरे बहुत आसक्त होगा। और यह देख के ना वेंकट भट्ट बहुत खुश होने लगे कि गोपाल का किस प्रकार से आसक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में बढ़ रहा है, उनके साथ इस प्रकार का आसक्त होता जाता रहा। इस चीज को देख के वेंकट भट्ट बहुत प्रसन्न हुए। देखिए एक आदर्श माता पिता को इस प्रकार से होना चाहिए, सीखना चाहिए वेंकट भट्ट कि छोटा बालक है और चैतन्य महाप्रभु एक साधु एक सन्यासी से आसक्त हो रहा है तो उसको क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी नहीं है, अगर कोई बालक अगर साधु संघ के संगति में गया तो माँ बाप को चिंता होने लगती कि कहीं हमको छोड़ के ना चला जाए, है ना। लेकिन एक्चुअली देखा जाए ना कि अगर साधु संघ से अगर बालक अगर बच्चा आसक्त हो रहा है ना, वो बहुत फायदेमंद है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि आगे चल के उस माता पिता का जीवन पर्यंत भी, अभी उनके पास टाइम में हम देखेंगे अभी कि किस प्रकार से उसने ऐसा चैतन्य महापुरुष से आसक्ति हुआ, लेकिन माँ बाप का सेवा जीवन उनके जीवन पर्यंत तक किया उन्होंने ऐसा। तो इस प्रकार से हमको एक माँ, एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि उस पिता को पिता नहीं बनना चाहिए जो अपने बालक को कृष्ण भक्ति में नहीं लगाता है, है ना। उस गुरु को गुरु नहीं बनना चाहिए जो अपने शिष्य को कृष्ण के तक नहीं पहुंचाता है। और उस माँ को माँ कभी नहीं बनना चाहिए जो अपने पुत्र को वह भगवान के चरण कमलों में सेवा में नहीं लगाता है। ये भागवतम में साफ साफ मना किया गया है। भक्ति सिद्धांत महाराज के जीवन में आप देखेंगे कि भक्ति सिद्धांत महाराज ने शायद उनको ऐसा वो कट्टर ब्रह्मचारी थे, लेकिन उन्होंने कभी तो उनके गुरु भाइयों में से कोई तो ऐसा बोला कि आप विवाह क्यों नहीं करते हैं, तो उस समय भक्ति सिद्धांत महाराज ये बोलते हैं कि अगर मुझे ये विश्वास रहता कि मैं अपने पुत्र को भगवान कृष्ण की सेवा में लगा सकता हूँ तो मैं निश्चित रूप से विवाह करता और बहुत सारे बच्चों को उत्पन्न करता और उनको कृष्ण की सेवा में लगाता, लेकिन वे मुझे विश्वास नहीं इसलिए मैं विवाह नहीं करूँगा। तो इसका मतलब यह है कि हमको अपने बच्चों को भगवान के चरण कमलों में, भगवान के साधु संगति में लगाना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो उसका उदाहरण आप देख रहे हैं संसार में बहुत लोग पड़े हैं। शुरुआत में तो बच्चे जब तक बच्चे रहते तब तक साथ में रहते हैं, सुनते हैं, बड़े होते हैं, फिर धीरे 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 वो क्या होता है, माता पिता से दूर हो जाते हैं। एक दिन ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वो माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं और अपने अलग रहने लगते हैं। ये परिस्थिति आप देख रहे होंगे कितने सारे हो रहा है। लेकिन अगर शुरुआत से ही बच्चों को अगर संस्कार दिया जाए, है ना। एक प्रभु जी बताते हैं कि एक बार मैं निकला था, रास्ते पे जा रहा था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग, क्योंकि साधु अगर जा रहे हैं रास्ते में तो लोगों का ऐसे ही नज़र पड़ जाती है, तो बोल रहे थे वो कि एक बालक था जो कि माता के गोद में था, माता लेके चल रही थी और मैं भी चल रहा था, तो उस पुत्र ने पूछा कि मम्मी ये कौन है, तो माता ने क्या बोला, ये भूत है बेटा, भूत है, ये सैफ्रन वाला भूत है, है ना, लाल कपड़ा वाला भूत है। तो इस प्रकार से सोचिए कि उस बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा आगे चल के। तो साधु संगत में अगर साधुओं से अगर वो स्वाभाविक है कि एक जो बालक होता है ना वो साधु संगत से स्वाभाविक है कि वो आसक्त तो उनसे आकर्षित होता है, तो इसमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको भेजना चाहिए उनके पास। लेकिन आजकल ऐसी परिस्थिति नहीं हो, ठीक उल्टा परिस्थिति हो चुका है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि उस पिता को पिता नहीं बनना चाहिए, उस माता को माता नहीं बनना चाहिए और उस गुरु को गुरु नहीं बनना चाहिए जो कि अपने पुत्र को वह भगवान के चरण कमलों तक नहीं लेके जाता है। तो इस प्रकार से वेंकट भट्ट जो कि उनको खुशी की सीमा नहीं रही कि हमारा बालक जो है वह
श्री चैतन्य महाप्रभु से इतना आसक्त हो रहा है, और निश्चित रूप से वो बालक न गोपाल चैतन्य महाप्रभु से बहुत ही आसक्त हो गया, और इतना आसक्त हो गया कि जब उसको यह बात पता चला, छोटा बालक था लेकिन जब उसको यह बात पता चला कि चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है, कौन है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, लेकिन कौन से रूप में है, एक सन्यासी के वेश में, क्योंकि अभी अभी सन्यास लेके चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा के लिए निकले थे। तो जब भी इसको यह ज्ञान हो गया कि चैतन्य महाप्रभु भगवान भगवान है, तो उसको फिर बहुत रोने लगा वो कि भगवान हो के ही इस प्रकार के सन्यासी रूप में क्यों है। तो बहुत रोने लगा, क्योंकि सन्यासी रूप में कोई भी एक भक्त होता है जो ना, और विशेष करके जो गौड़ीय भक्त होते हैं ना, कभी भी चैतन्य महाप्रभु को सन्यास रूप में नहीं देखना चाहते। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे इस्कॉन संस्था में गौर निताई चैतन्य महाप्रभु का सेवा पूजा होता है, लेकिन उनके सन्यास रूप का सेवा पूजा नहीं होता है। हम गौर निताई को भी रखते हैं तो कैसा सुंदर बाल लगाते हैं, है ना, उनका सुंदर ड्रेसिंग करते हैं, पगड़ी लगाते हैं, है ना, क्योंकि कभी भी गौड़ीय वैष्णव चैतन्य महाप्रभु को सन्यासी के रूप में नहीं देखना चाहता है। और आप ये जब लीला सुनेंगे, आप कभी पढ़ेंगे या तो कभी सुनेंगे कि चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास ले रहे थे, उनके बाल जब निकाल रहे थे काटवा में, जब निकाल रहे थे, कितना वो नाई निकाल नहीं रहा था, रो रहा था, कंटिन्यू रो रहा था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के इतने सुंदर बाल थे ना कि वो कोई उनको सन्यासी के रूप में देखना ही नहीं चाहता था। तो इस प्रकार से ये गोपाल बालक जो है वो बहुत रोने लगा कि भगवान हो कि भी इस वेश में क्यों है। तो इस प्रकार से रोते रोते उस रात्रि वह सो गया, तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको स्वप्न दिया, उस बालक को स्वप्न में उन्होंने नवदीप का दर्शन किया कराया, और नवदीप का दर्शन करा के अपने उस रूप का दर्शन कराया जो कि संन्यास से पहले वाला उसका, हाँ, बहुत सुंदर बाल जो थे चैतन्य महाप्रभु के, सुंदर वर्ण कांति था उनका, उस रूप का उन्होंने दर्शन कराया। और जैसे ही उस बालक ने दर्शन किया और तुरंत ही उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया। जैसे ही दंडवत मारा, चैतन्य महाप्रभु ने उसको उठाया और उसका उठाया, तो उस समय त्रिभंग ललित श्याम सुंदर के रूप में भी चैतन्य महाप्रभु ने उसको दर्शन दिया स्वप्न में। तो सोचिए इस बालक के ऊपर कितनी विशेष कृपा चैतन्य महाप्रभु का, बचपन में 7 साल की उम्र में ही, है ना। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अपने इस संन्यास से पहले वाला रूप और विशेष करके श्याम सुंदर रूप का दर्शन कराया गोपाल को। और दर्शन समाप्त हुआ, जैसे ही उसका स्वप्न टूटा, सुबह हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल को अपने पास बुलाया, गोपाल को अपने पास बुला के और उनको कुछ आदेश दिया। वो ऐसा आदेश था जो कि पूरे जीवन के लिए आदेश दिया चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल को। क्या आदेश दिया किसी को पता है, किसी को मैंने मालूम है क्या आदेश दिया चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल को? दो आदेश दिया। पहला यह कि माता पिता का मतलब उनको भगवत धाम जाने तक, मतलब मृत्यु पर्यंत उनकी सेवा करना। चैतन्य महाप्रभु ने पहला उनको आदेश दिया कि अपने माता पिता का जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाता है, या अर्थात भगवत धाम, क्योंकि मृत्यु तो शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि वेंकट भट्ट और लोग भी बहुत बड़े भक्त थे भगवान विष्णु के। एक्चुअली भगवान बाद में ना चैतन्य महाप्रभु ने उनको कृष्ण भक्त बना दिया, क्योंकि रोज अभी 4 महीना मतलब क्या थोड़ी ना 4 महीना डेली वो सत्संग करते थे, डेली चर्चा किया करते थे, क्योंकि वेंकट भट्ट प्रचंड विद्वान थे और उनके जो दोनों भाई तो वो भी विद्वान थे, प्रबोधानंद सरस्वती जिनसे कि गोपाल ने दीक्षा लिया, बाद में उनके ही चाचा से दीक्षा लिया उन्होंने। प्रबोधानंद सरस्वती का आपने नाम सुना होगा, वृंदावन में कालिया दह के पीछे उनका समाधि है प्रबोधानंद सरस्वती का। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का आदेश गोपाल को कि जीवन पर्यंत तुम माता पिता की सेवा करना, और जब भी वह इस शरीर को त्याग कर भगवत धाम चले जाएंगे, उसके पश्चात तुम कहाँ चले जाना, वृंदावन चले जाना। और दूसरा आदेश क्या दिया कि शादी मत करना, है ना, माता पिता की सेवा करना और शादी मत करना और वृंदावन चले जाना। ये चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल को उपदेश दिया। तो इस प्रकार से पूरे जीवन का चैतन्य महाप्रभु ने उस गोपाल को आदेश दे दिया। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने 4 महीने वहाँ पे बिताया और विशेष करके वेंकट भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती इस उन लोग के साथ काफ़ी उन्होंने बहुत सारे तत्वों के ऊपर उन्होंने चर्चा करते थे दिन भर, और इसको लेके विष्णु और कृष्ण के लेके बहुत सारा उन लोग में तर्क हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर किस प्रकार से बताया कि विष्णु भी कृष्ण के एते चांस कला कौन सा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उनको समझाया कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण ही सारे अवतारों के उद्गम हैं। तो उसके बाद से वेंकट भट्ट जो थे ये विष्णु भक्त और कृष्ण भक्त बन गए। तो चैतन्य महाप्रभु 4 महीने के बाद जब जाने लगे तो उस समय सोचिए कि अभी गोपाल इतना आसक्त हो चुका था कि चैतन्य महाप्रभु को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। तो बोला कि नहीं, मुझे भी साथ में चलना आपके। चैतन्य महाप्रभु ने बोला नहीं, मैंने तुमको आदेश दिया हूँ कि माता पिता की सेवा करना, उसके बाद तुम वृंदावन जाना। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत समझाया गोपाल को, और उसके बाद जाके गोपाल रुका और फिर चैतन्य महाप्रभु आगे चले गए। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु ने 4 महीना वेंकट भट्ट के घर पे बिताया, मतलब कितना विशेष जगह रहेगा वह, तो सबको जाना चाहिए वहाँ पे और उनका उनके घर पे और इस लीला को स्मरण करना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार से उन्हें। और इतना ही नहीं, अभी चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ पे थे तो गोपाल ने जब आए थे शुरुआत में जब आए थे ना, तो गोपाल ने क्या किया था, चैतन्य महाप्रभु के चरण को धोया था, और चरण को धो के उसने सब लोग के जितने भी घर में थे सब लोग को उनका चरणाभिषेक उनके सिर पे छिड़का हुआ था, और बाकी जो चरणामृत बताया था वो गोपाल पी लिया था। और जैसे ही पिया था गोपाल, उसी समय उसको उसके शरीर के अंदर अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए थे और बेहोश होकर गिर पड़ा था। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको उठाया, ऐसा है ना। तो इस प्रकार से गोपाल के ऊपर विशेष कृपा चैतन्य महाप्रभु का, और उनके आदेशानुसार गोपाल ने क्या किया, गोपाल भट्ट ने माता पिता की बहुत ही अच्छी तरह से सेवा किया, और उनके जाने के पश्चात फिर उन्होंने प्रबोधानंद अपने चाचा ही प्रबोधानंद सरस्वती से उन्होंने दीक्षा ग्रहण किया, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार वो कहाँ पे गए, वृंदावन के लिए रवाना हो गए। और वृंदावन के लिए रवाना हो गए, जैसे ही वृंदावन में पहुँचे तो वहाँ पे पहले से इन्फॉर्मेशन पहुँच चुका था, चैतन्य महाप्रभु लेटर लिख के भेज चुके थे कि एक ऐसा भक्त आने वाला है, गोपाल वहाँ पे आने वाला है, ऐसा करके पहले से ही मैसेज दे दिए चैतन्य महाप्रभु उन गोस्वामियों को। बाकी और जो भी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पास, जो भी जीव गोस्वामी पास, जो भी लोग वहाँ पे रह रहे थे, सबको पहले से ही मैसेज दे दिया था। विशेष करके ये जो गोस्वामी है ना, कहाँ पे रहते थे, वो दामोदर मंदिर में रहते थे। दामोदर मंदिर कौन कौन गए वृंदावन में, वृंदावन नहीं गए, ध्यान नहीं आ रहा है, आप गए तो जी वृंदावन, वृंदावन नहीं गए, वृंदावन नहीं गए, अच्छा तो आप चलना चाहिए साथ में। आप गए, आप दामोदर मंदिर गए ना, आप गए, आप भी वृंदावन गए नहीं, इस बार जाना है, अच्छा आप गए दामोदर मंदिर, दामोदर मंदिर, दामोदर मंदिर नहीं जाना
सब मंदिर बहुत सारे देखे
पता नहीं है।
अच्छा ठीक है, एक एक ये एक कॉमन चीज याद करा था जो बहुत फेमस है कि उसका 4 बार परिक्रमा करने से गोवर्धन परिक्रमा का फल मिलता, अभी याद आया,
वो किया
था। हाँ तो वही है दामोदर मंदिर। तो ये दामोदर मंदिर ना, एक दामोदर मंदिर एक ऐसा जगह है पूरे ब्रह्मांड में, ये बहुत विशेष जगह है एक्चुअली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितने भी गौड़ीय वैष्णव आए ना, सब यहीं पे रहते थे, वहाँ पे कृष्ण कथा किया करते थे, वहीं पे ग्रंथों का लिखे। और जब जब प्रभुपाद जी ने अपने घर को त्याग कर वृंदावन के लिए रवाना हुए तो कहाँ पे आए, दामोदर मंदिर में, दामोदर में। और वहाँ पे प्रभुपाद जी का भजन कुटी है, जहाँ पे बुक्स लिखते थे वह भी है, प्रभुपाद जी बुक्स लिख रहे हैं, और उसके बाद प्रभुपाद जी का किचन है, और किचन में खिड़की है जहाँ पे उन्होंने रूप गोस्वामीपाद का दर्शन किया था, वहाँ पे रूप गोस्वामीपाद ने उनको दर्शन दिया था, याद आ गया सबको। तो ये बहुत विशेष जगह है एक्चुअली। तो यहीं पे जो भी गौड़ी आचार्य, जो भी भक्त अगर वृंदावन गए ना, वो दामोदर मंदिर जाते ही जाते हैं। शुरुआत पहले दामोदर मंदिर से ही करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अनेक, वहाँ पे समाधि है, बहुत सारे वैष्णव की समाधि है वहाँ पे। वृंदावन में इतना समाधि किधर नहीं है जहाँ पे जो दामोदर मंदिर गए हैं, इतना समाधि किधर भी नहीं है, बहुत सारे वैष्णव का समाधि है ना, याद आ गया ना, है ना, यस यस बहुत है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो ने चैतन्य चैतन्य लगा वहीं पे समाधि है, जीव गोस्वामी पाद का समाधि है वहाँ पे, है ना, तो रूप गोस्वामी पाद का समाधि है, उनका भजन कुटी है, है ना, तो सब लोग वहीं पर रहते थे और इसलिए प्रभुपाद जी ने उसी स्थान को चुना। और प्रभुपाद जी मेरे ख्याल से पहला और दूसरा स्कंद जो कि दामोदर मंदिर में ही बैठ के लिखा उन्होंने, ऐसा पहला और दूसरा भागवतम का, तो ये बहुत विशेष स्थान दामोदर मंदिर है ना। तो इस प्रकार से गोपाल जो था वो चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार उन्होंने दामोदर मंदिर पहुंचे और वहां पे पहले से ही सबको मालूम था कि गोपाल भट्ट नाम का एक बहुत विशेष भक्त आने वाला है जो कि चैतन्य महाप्रभु का मैसेज उन लोगों को मिल चुका था। इसलिए बहुत सुंदर तरीके से उनको स्वागत करने की व्यवस्था की गई है ना, सब लोगों ने मिल के रूप गोस्वामी पाद समा, सोचिए रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद ये बहुत अग्रज बहुत सीनियर लोग थे, लेकिन फिर भी उनका हृदय देखिए, विशेष करके जो छह गोस्वामी है ना इतना सरल रहते थे, सरल जीवन यापन करते थे ना, उनको सब लोग प्रेम करते थे है ना, बहुत सब लोग। इसमें हम पढ़ते ना, धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो, जो धीर व्यक्ति है जिनको अपने इंद्रियों पे कंट्रोल है वो भी उनको प्रेम करता था, और जो भौतिकवादी व्यक्ति अधीर है वो भी प्रेम करता था, मतलब इस कैसे ये लोग जीवन यापन करते थे सोचिए। तो अभी एक गोपाल भट्ट नाम का एक भक्त आने वाला है तो इन लोगों ने कितना स्वागत की तैयारियां की उनको, हालांकि वो ऐसा था कि नए भक्त नए भक्त कोई आ रहा है तो पुराने लोग कैसे सोचते हैं कि अरे चलो अभी अभी तो जुड़ा, मैं तो इतने सालों से जुड़ा हूँ, लेकिन हमको इन गोस्वामियों के जीवन से सीखना चाहिए कि एक्चुअली भक्ति मार्ग में कोई नया और पुराना नहीं होता है। आप देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, अक्सर ऐसा होता है कि हमने जिसको हमारे थ्रू जिस जो भक्त बना जो भक्त, और कल जाके वो हमारा उद्धार कर सकता है, क्योंकि भक्ति जो है ना वो इसी जन्म की नहीं है, है ना। हम भगवद गीता में पढ़ते हैं ना कि अगर हम भक्ति करते करते अगर इस ये जो शरीर है छूट भी गया तो नेक्स्ट जन्म जब मिलता है तो भक्ति वहीं से स्टार्ट होता है। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कोई जिसका भक्ति करना थोड़ा ही बहुत गया था और वो वापस उसका शरीर छूटा तो वापस जन्म लेगा तो कहाँ से शुरू करेगा, 90% कर लिया था तो वहाँ से शुरू करेगा, तो सोचिए वो उसका प्रगति कितना, मतलब ऐसा लगेगा कि अभी जुड़ा और इतना बढ़ गया। तो हमसे जुड़ा हुआ भक्त भी हमारा उद्धार कर सकता है, इसलिए भक्ति मार्ग में दिन गिनती करके कोई सीनियर और जूनियर नहीं है, दिन गिनती नहीं करना चाहिए कि मैं इतने साल से जुड़ा हूँ, इतने साल से जुड़ा हो तो हमको ये देखना चाहिए कि हमारा क्या इन गोस्वामियों की तरह हमारा मूड है, उनका जिस प्रकार से वो लोग सरल जीवन यापन करते थे इसको अपने से तुलना करना चाहिए है ना, कि इस प्रकार का आया कुछ परसेंट हमारे जीवन में आया क्या ऐसा। तो इस प्रकार से सारे गोस्वामियों ने मिलके इस गोपाल भट्ट का बहुत सुंदर तरीके से स्वागत किया और स्वागत करके उन्होंने बहुत ग्लोरीज किया उनका कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को आपकी सेवा मिली, 4 महीने तक आप चैतन्य महाप्रभु के पास रहे। तो इस प्रकार से उन्होंने करके उनका बहुत ग्लोरीज किया और उसके बाद फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी वहाँ पर रहने लगे। वहाँ पे विशेष करके रूप सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी पाद को इन लोग को सहायता करते थे, क्या इनके जो भी ग्रंथ जो ये लोग लिखते थे ना इनको संपादित करते थे वो, है ना, इस प्रकार की सेवा में होती है। और विशेष करके इन ग्रंथों का वितरण करना ये सब गोपाल भट्ट गोस्वामी किया करते थे। तो अभी चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा करते करते वापस नवद्वीप पहुँचे, वापस नवद्वीप पहुँचे तो गदाधर पंडित के इधर रहे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के एक चिंता माइंड के अंदर सता रहा था। वो चिंता क्या सता रहा था कि क्या गोपाल भट्ट पहुँच गया क्या वृंदावन, और वृंदावन पहुंचा तो कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं, किधर से भी नहीं आया, कहाँ भटक तो नहीं गया, इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को बहुत चिंता था। और चैतन्य महाप्रभु को जब चिंता हुई इस बात का तभी एक कोई भक्त पत्र लेकर आया वृंदावन से, किसके लिए पत्र लेकर आया, गदाधर पंडित को, कि गदाधर पंडित को मैसेज दिया गया कि गोपाल भट्ट अभी वृंदावन में आ गया है, हम लोग के साथ में रह रहा है। तो जैसे ही इस पत्र को चैतन्य महाप्रभु ने पढ़ा तब जाके उनको शांति मिली कि चलो बहुत सुरक्षित हो पहुंच चुका है वृंदावन। तो इस प्रकार से जब ही चैतन्य महाप्रभु सुन ले कि वो वृंदावन पहुंच चुका है और चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत ही वो जो पत्र लेके आया हुआ व्यक्ति था उसको उन्होंने क्या किया, अपना उन्होंने एक उनको एक चौकी जिसपे वो प्रसाद लिया करते थे वो चौकी और अपना कोपिन उनको दिया, किसको, उस जो पत्र लेके आया था उसको दिया, किसको देने के लिए, गोपाल भट्ट को। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कितना ध्यान रखे थे उनको, और ये विशेष उनको गिफ्ट प्रदान किया, वो आज भी देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? वो राधा रमन मंदिर में आज भी देखने के लिए मिलता है। आज भी इस बार वृंदावन चले गए तो देखेंगे इसको। ध्यान रखिए, ये इन चीजों का दर्शन करेंगे हम, क्योंकि जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने अपना वस्त्र दिया उनको, और उस वस्त्र का आज भी पूजा। जैसे कि हमको कोई भी अगर हम सीनियर वैष्णवास है या गुरु महाराज है, इनका कोई भी अगर वस्त्र या कुछ भी चीज़ अगर हमको प्राप्त होता है तो उसको पूजा वाले स्थान पर रखना चाहिए, उनको पूजित करना चाहिए। अक्सर कभी कभी हम देखते हैं कि कभी कभी कोई वैष्णव का अगर मिल गया कुछ होता तो हम उसको धारण कर लेते हैं। एक्चुअली धारण कभी भी नहीं करना चाहिए उसको, हम वो पूजित करना चाहिए, उसका पूजा करना चाहिए हमको। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने ये गिफ्ट उनके लिए भेजा, और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इनका बहुत सुंदर तरीके से वह अपने पास रखे चैतन्य। और जैसे ही उनको ये प्राप्त हुआ, और पूरा वो 4 महीना, क्योंकि ये जो अभी जब रह रहे थे ना अभी, तो मैं बोला ना पूरा कथा वहाँ चलता था, कोई ना कोई जीव गोस्वामी पाद विशेष करके कथा कजा करते थे, क्योंकि जीव गोस्वामी पाद प्रचंड विद्वान थे, सबसे बड़े विद्वान थे। 5 लाख श्लोक की रचना किया उन्होंने जीव गोस्वामी पाद ने। तो लेकिन जब ये गोपाल वहाँ पे पहुँचा ना, तब से केवल इनके ही मुख से वो चैतन्य महाप्रभु के वो 4 महीने वाला कथा जो वेंकट घर उनके घर पे रखे तो सुने थे, एक एक करके वो सुना रहे थे चैतन्य महाप्रभु के बारे में। और इसी बीच में वो पत्र जो लेके गया था वो आया, क्या लेके आया? चौकी और चैतन्य महाप्रभु का कॉपिन वस्त्र लेके आया। तो बहुत वो तो एकदम आनंदित होने लगे कि चैतन्य महाप्रभु ने हमको खाद रखा है, गिफ्ट दिया, और बहुत ही तो रोने लगे, प्रेम वस्त्र उन्होंने रहने लगे कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की कृपा है हमारे ऊपर। और ये देखकर सारे गोस्वामी बहुत प्रफुल्लित हुए। तो उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक गोपाल भट्ट ने रखा, और फिर उसके बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रमन जी का प्राकट्य कराया, है ना, वहीं से वृंदावन में ही राधा रमन जी का मंदिर है। ये राधा रमन जी का प्राकट्य कैसे हुआ अभी हम इसके बारे में सुनेंगे। तो राधा रमन मंदिर कौन कौन गए राधा रमन मंदिर, है ना, राधा रमन के बारे में सुने कौन कौन, चलो गए नहीं तो छोड़ो, क्योंकि ये बहुत फेमस विग्रह है राधा रमन। आज भी व्हाट्सएप में देखे होंगे तो राधा रमन का कितना फोटो आया, देखा क्या आपने, ऑब्जर्व किया? हाँ, बहुत लोग भेजे डिवोशनल ग्रुप में राधा रमन जी का फोटो। चलो मैं आपको तो उनका दर्शन करा देता हूँ। ये वृंदावन का सबसे सुंदर विग्रह है राधा रमन जी, इसके बारे में बताता हूँ अभी। ये सुबह से आ रहा था, क्यों आ रहा था पता है? क्योंकि आज गोपाल इनके जो प्रकट कराने वाले जो आचार्य है उनका आज डिसअपीयरेंस डे है, इसलिए आज ये फोटो आ रहा था, है ना। उनका राधा रमन जी का प्राकट्य दिवस नहीं है लेकिन डिसअपीयरेंस है, इनको प्रकट करने वाले का आज डिसअपीयरेंस डे है, इसलिए इनका उनके विग्रह जो थे उनका फोटो आज आया बहुत सारा। तो ये जो चौकी और कोपिन उन्होंने रखकर उसके सेवा पूजा करने लगे, और चैतन्य महाप्रभु की लीला और कथा का कंटिन्यूस वो गायन करते थे गोपाल भट्ट। और विशेष करके वो 4 महीने वाला कथा वो हमेशा कंटिन्यू उस चीज़ को स्मरण करते थे। और उसके बाद फिर वृंदावन से वो निकले, क्योंकि अलग अलग बुक डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग जगहों पे जाके करते थे, वो संपादन करते थे बुक का। फिर उन्होंने प्रचार के लिए उन्होंने निकले कहाँ पे? नेपाल, प्रचार के लिए नेपाल गए। नेपाल में गंडकी नदी है ना, आप लोगों ने नाम सुना है, कोई गया है? कोई नहीं गया ना। ये गंडकी नदी पूरे विश्व में या तो पूरे ब्रह्मांड में ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा नदी है जहाँ पे शालिग्राम प्राप्त होता है। आप नॉर्मली आप हाथ डालेंगे आपको मिलेगा, इतनी शालिग्राम है, और सब अलग अलग प्रकार के शालिग्राम है, अलग अलग रूप, कोई सुदर्शन शालिग्राम, कोई मत्स्य शालिग्राम, और नरसिंह शालिग्राम, जगन्नाथ शालिग्राम है, कृष्ण है, श्याम है, अलग अलग नामों का उसको विद्वान लोग जो भी शालिग्राम के बारे में शास्त्रों में वर्णन है तो वो चिन्ह देख के बताते हैं कौन सा शालिग्राम है, है ना। एक्चुअली में हर एक गृहस्थ को शालिग्राम रखना चाहिए, शालिग्राम को सेवा पूजा हर एक गृहस्थों को करना चाहिए, है ना। गृहस्थों के घर में शालिग्राम बहुत इंपॉर्टेंस है, रूल्स और रेगुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल है उनका सेवा करना। शालिग्राम का सेवा पूजा करने के लिए एक तुलसी दल और थोड़ा सा सुगंधित ऑयल और थोड़ा सा उनको भोग लगाने के लिए कुछ शहद इत्यादि बस करते हैं, बस। और कोई
ये नहीं है। इसलिए हर एक गृहस्थों को राधा कृष्ण से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है शालिग्राम की सेवा करना, हालांकि वो भी भगवान कृष्ण ही है शालिग्राम के रूप में, है ना। तो इसलिए मेरे पास है मत्स्य शालिग्राम, मेरे पास है।
अच्छा,
वही तो मैं बोल रहा हूँ कि गृहस्थ मतलब सारे लोग को जो एक्टिव हो चुके हैं, जो नियमों का अच्छे से पालन करने लगे हैं। हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन रखना चाहिए सबको ऐसा। हम भक्ति मार्ग को बहुत सीरियसली से अगर पकड़ लिया, घर में विग्रह रखते हैं इत्यादि, तो हम शालिग्राम की सेवा पूजा कर सकते हैं ऐसा। मुझे वहाँ से नहीं मिला था, लेकिन वहाँ गए हुए एक भक्त है मीरा रोड मंदिर के हेड पुजारी, जो कि वो जब जाते हैं वो एक शालिग्राम लेके आते हैं ऐसा वहाँ से, तो उनके पास ऐसा करके उनके पास 400-500 शालिग्राम है घर में, तो पूरा उसका सेवा कर रहे हैं। अरे अपने गुरु महाराज के पास कितना है, सबको सजाते हैं शालिग्राम को, और अलग अलग है उनके पास कितने वैरायटी ऑफ शालिग्राम है, सुदर्शन नरसिंह देव ये वो सब है, और सबको पर्सनली वो डेली सेवा पूजा करते हैं महाराज जी। और एक छोटे छोटे जो है वो बहुत सारे, लगभग मतलब ख्याल से 400-500 है छोटे छोटे, और बाकी बड़े बड़े भी बहुत सारे हैं जो कि अल्टर में दर्शन होता है, और जो छोटे छोटे उनके लिए एक घर बनाया है, उनको नाम रखा है हरिनगर। बहुत सारे हरि है उसके अंदर, हाँ महाराज ने नाम दिया है हरिनगर। और क्या है, पहले महाराज जो वो सबका सेवा करते थे, लेकिन वो गिना नहीं करते थे एक्चुअली। फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ ना, सर्वेंट लोग ना एक एक गायब करने लगे, तो महाराज फिर गिनना चालू कर दिया। तो अभी डेली हर एक शालिग्राम को लेते हैं, उनको तेल लगाते हैं, गिन के वापस रखते हैं डेली। तो महाराज का सेवा पूजा, विग्रह सेवा पूजा करने के लिए कम से कम 2.5 से 3 घंटे जाता है डेली का, और वो सबको पसंद ही करते हैं एक्चुअली। विग्रह सेवा पूजा में अगर डेडिकेशन देखे तो गुरु महाराज का बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। और ऐसा नहीं, ये जो भी 400-500 उनके पास शालिग्राम है ना, और बाकी गौर निताय है, नरसिम्हदेव है, प्रभुपाद जी है, वो सबको लेके ट्रैवलिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनको छोड़े बिना नहीं जाता, सबको लेके ट्रैवलिंग करते हैं ऐसा, कहीं पे भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि छोड़ के जाते विग्रह को, विदेश भी जाते तो लेके ही जाते हैं, वो छोड़ते नहीं है कभी विग्रह को, उन लोग को साथ में लेके जाते हैं। तो इस प्रकार से जब ये गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रचार के लिए निकले तो नेपाल पहुँचे, और वहाँ पे गंडकी नदी जिसके पास पहुँचे, तो उन्होंने गंडकी नदी में उन्होंने अपने कमंडलों में कुछ जल लेना चाहा, जो उसका पान करने के लिए उन्होंने जल लेना चाहा, अपने कमंडल को उसमें डाला गंडकी नदी में। और जैसे ही कमंडल को उठाया और तो उन्होंने देखा कि उसमें बहुत सारे शालिग्राम कमंडल में आ गए, तो वापस उन्होंने डाल दिया पानी, फिर वापस बहुत सावधानी से, उनको मालूम था कि यहाँ पे शालिग्राम जी है, तो इसलिए उन्हें फिर से बहुत सावधानी से पानी को लिया, और जैसे लिया फिर से उसके अंदर शालिग्राम आ गए, फिर से छोड़ा उन्होंने, फिर से लिया फिर से आ गए, टोटल 12 शालिग्राम बार बार उनके कमंडलों में आते थे 12 शालिग्राम। तो जब 3 बार हो चुका तो गोपाल भट्ट गोस्वामी समझ लिए कि भगवान चाहते कि मैं इनकी सेवा पूजा करूँ, तो उन्होंने उस गंडकी नदी से उन्होंने उस 12 शालिग्राम को लेकर वो वृंदावन आ गए, और उस शालिग्राम की वो सेवा पूजा वृंदावन में करने लगे बहुत प्रेम से, है ना, बहुत सुंदर तरीके से वो शालिग्राम की सेवा करने लगे। और जब सेवा करते करते कोई कुछ साल निकल गया, तो एक व्यापारी आया वृंदावन में, व्यापारी आया और उसने बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, कुछ ड्रेस इत्यादि, कुछ मुकुट पगड़ी, ये बहुत सारे ना एक विग्रह के लिए जो लगता है ना, तो सारे चीज़ें ना बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में वो ला के किसको दे दिया, गोपाल भट्ट गोस्वामी को। अभी गोपाल भट्ट गोस्वामी क्योंकि वो व्यापारी जानता था कि इन ये भक्त लोग हैं, और इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी जो कि वो कंटिन्यू भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो उन्होंने इस प्रकार का जो गिफ्ट था उनको बहुत सारा गिफ्ट उनको प्रदान कर दिया। और जब ये प्रदान कर दिया तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ले तो लिया, लेकिन अभी उसको यूज नहीं कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी इतने सारे शालिग्राम है, शालिग्राम को कोई ड्रेसिंग नहीं कर सकते हैं, है ना, ड्रेस नहीं पहना सकते हैं, और माला है ना, उनको पगड़ी नहीं लगा सकते हैं, उनको मुकुट नहीं लगा सकते, लेकिन इतना सारा सामग्री आ गया है, तो उन्होंने
सोचते कि प्रभु मेरे पास ये सब क्यों भेजवा दिए, मैं तो आपके शालिग्राम रूप की सेवा पूजा कर रहा हूँ और मैं इसका क्या करूँगा। इस प्रकार से उनके मन में इस प्रकार से इच्छा हुई। जब ये एक शुद्ध भक्त के अंदर जब कुछ इच्छा होता है इस प्रकार का, तो निश्चित रूप से भगवान उस इच्छा की पूर्ति करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा हमको एक शुद्ध भक्त के निरीक्षण में रह के सेवा पूजा करना चाहिए। उससे हमेशा आप हमारे लिए प्रार्थना करिए, है ना, आप हमारे लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि आपका भगवान सुनेंगे, है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम जाके भगवान के सामने डायरेक्टली बहुत सारे जीजीदार जी बोल डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ये नियम नहीं है। एक्चुअली एक भक्त के माध्यम से आप भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करिए। एक भक्त अगर प्रार्थना करता है तो निश्चित रूप से उसको भगवान सुनते हैं। और वैसे भी हमारा जो गौड़ीय मूड है ना, हम दर्शन करने, एक्चुअली हम दर्शन क्या कर सकते हैं भगवान का, हम दर्शन नहीं कर सकते। हमारा इस प्रकार का चक्षु नहीं है कि भगवान का दर्शन करके हम केवल जाते हैं अपने आँखों का एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन हमको, हम गौड़ीय वैष्णव को हमको ये मालूम होना चाहिए कि दर्शन करने के पीछे मूड क्या होना चाहिए। हम दर्शन करने, भगवान का दर्शन करने नहीं जाते हैं, हम भगवान को दर्शन देने जाते हैं। ये मूड होना चाहिए हमारा दर्शन करने का। हम मंदिर जाते हैं ना, तो हम भगवान को दर्शन देने जा रहे हैं, अपना प्रेजेंट देने जा रहे हैं कि मैं आज आया मंदिर प्रभु, मैं दर्शन देने जा रहा हूँ भगवान को। हम भगवान को दर्शन लेने के लिए हमारा योग्यता ही नहीं है, वो योग्यता हमारे पास आई नहीं है, हैं? क्योंकि भगवान का दर्शन कौन कर सकता है। ब्रह्मचर्यता में ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेमान जनक छुरित भक्ति विलोचने न, जिनका आंखों में प्रेम के अंजन नहीं लगाना है तो वो भगवान का दर्शन नहीं कर सकता है। इसलिए गौड़ीय मूड हमारा यह है कि हम भगवान को दर्शन देने जाते हैं। प्रभु आज आप हमको देख लीजिए, मैं आया था मंदिर, इस प्रकार के इस भावना से हमको भगवान के पास जाना चाहिए दर्शन करने के लिए। ये गौड़ीय मूड है। तो इस प्रकार से जब भी हम एक भक्त के, भक्त से कृपा याचना करके आप हमारे लिए प्रार्थना करिए, तो निश्चित रूप से उसको भगवान सुनते हैं। तो इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में जब इस प्रकार का विचार आया कि कैसे मैं ये सारे चीज़ का यूज करूँगा, इतना सारा आप मेरे पास आप भिजवा दिए, कैसे करूँगा। तो उस रात्रि जब वो सोए तो उसमें से, उस बारहों शिला में से जो एक दामोदर शिला था, वो सुबह विग्रह के रूप में प्रकट हो गया। 12 इंच का विग्रह उनके पास, 12 शालिग्राम था और उसमें से एक शालिग्राम कौन था, दामोदर शालिग्राम था। तो दामोदर शालिग्राम सुबह जब उठ के गोपाल भट्ट गोस्वामी ने देखा तो दामोदर शालिग्राम हो विग्रह। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ बताए आप लोगों को, बताइए कौन बताएगा, है ना। कभी भी हम माप देते तो ऐसा देते हैं ना, लेकिन मैंने ऐसा दिया। कभी भी हम भगवान के विग्रह को, भगवान को हम माप करके नहीं माप सकते हैं, ऐसा करके नहीं माप सकते हैं। तो ऐसा करना मतलब यहाँ अंत हो गया, यहाँ अंत हो गया, है ना। ऐसा करना मतलब उनका आदि अंत कोई है नहीं, हम उनको माप नहीं सकते हैं, है ना। वो इसका कोई आदि अंत नहीं हुआ, तो बहुत बड़े हैं। तो 12 इंच के प्रकट हुए, मतलब वो जो दामोदर शिला था वो विग्रह के रूप में प्रकट हो गया। इसलिए जो राधा दामोदर है ना, वो स्वयं शालिग्राम से ही प्रकट हुए विग्रह है। और पूरे वृंदावन में यही एक विग्रह ऐसा है कि जो मूल विग्रह है पूरे वृंदावन में। एक्चुअली मूल बाके बिहारी भी है, मुगलों के आक्रमण होने के बाद बाकी सब मूल विग्रह चले गए ना जयपुर राजस्थान, पुजारियों ने शिफ्ट कर दिया मुगलों का जब आक्रमण हुआ था तो। लेकिन उस समय तो बाके बिहारी जो थे वो निधिवन में, वो रासलीला के लिए गए हुए थे, वो सब तो थे ही नहीं मंदिर में, तो उनका कुछ हुआ नहीं। लेकिन राधा रमन जी छोटे विग्रह थे, इसलिए पुजारियों ने उनको यहीं छुपा दिया वृंदावन में ही। लेकिन बाकी जितने भी बड़े बड़े विग्रह थे सबको शिफ्ट कर दिया। तो बहुत ही सुंदर विग्रह राधा रमन जी का। और जैसे ही इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इनको देखा कि, और तुरंत ही वो रोने लगे, प्रभु आपने कितना बड़ा कृपा किया, मैंने इस प्रकार से, मेरे पास इतने सारे ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी, और मैंने इस प्रकार से सोचा था आप उस विग्रह का रूप धारण कर लिए। और फिर वो बहुत सुंदर तरीके से गोपाल भट्ट गोस्वामी बाद उस विग्रह की सेवा पूजा करने लगे। लेकिन उनका इतना खुशी की सीमा नहीं लगे कि वो पूरा तुरंत ही सारे गोस्वामियों को उन्होंने बुलाया सबको बुलाओ भेजा कि अब हमारे पास दामोदर शालिग्राम तो हो विग्रह के रूप में प्रकट हो गया, पूरा वृंदावन में हलचल मच गया। ये पूरा सबको संदेश फैल गया कि जो गोपाल भट्ट गोस्वामी पास के पास जो शालिग्राम था उसमें से दामोदर शालिग्राम वो विग्रह बन गया, पूरा वृंदावन में फैल गया और सब लोग एक ही जगह भाग के जा रहे हैं कहाँ पे, राधा रमन जी का दर्शन करने के लिए, तभी नामकरण नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से उस विग्रह का दर्शन करने के लिए पूरा वृंदावन भागने 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 भाग के वहीं पे जाने लगा और फिर सारे गोस्वामी सारे भक्तगण वहाँ पे इकट्ठा हुए और सब भक्तों ने मिलकर फिर उनका नामकरण किया, विशेष करके जो गोस्वामियों ने मिलकर उनका नामकरण किया। उनका नाम क्या पड़ा? राधा रमन। राधा रमन मतलब क्या होता है? जो श्रीमती राधा रानी के साथ रमन करते हैं उनका नाम राधा रमन, मतलब कौन है वो? कृष्ण, है ना। ये राधा रमन जो है कृष्ण का नाम है, राधा रानी का नाम यहाँ पे जो राधा है ना वो राधा रानी के लिए नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिए, है ना, कि यहाँ पे जो राधा है ना राधा रमन में जो राधा है ना वो राधा नहीं है एक्चुअली, है ना। राधा रमन जो राधा के साथ रमन करते हैं वो कृष्ण है ना, तो उनका नाम, इसलिए हम जब भी उनका उनको ले गाते हैं ना जय राधा राधा रमन राधा राधा रमन राधे गोपाल भट्ट गोस्वामी प्राण धन हे, है ना। तो जब राधा रानी को साथ में जोड़ेंगे तो राधा राधा रमन, है ना, समझे अभी, है ना। तो उनका कृष्ण का नाम है राधा रमन, है ना, अगर उनके साथ राधा रानी तो राधा राधा रमन, है ना। तो इस प्रकार से नामकरण किया गया राधा रमन जी का और वो राधा रानी तो साथ में नहीं है लेकिन एक एक मुकुट के रूप में आज भी जो कि राधा रानी का प्रतीक है उनको पास में रख के उनके सेवा पूजा किया जाता है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत नामकरण हुआ, नामकरण होने के बाद बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने इस इनके लिए मंदिर बनाया और उनके स्थापना किया और बहुत सुंदर तरीके से राधा रमन का सेवा पूजा चलने लगा। और ये इतने सुंदर विग्रह है, इतने सुंदर हैं, इनका इतना नाम है एक्चुअली पूरे ब्रज में कि सब लोग इनका दर्शन करने के लिए समय निकाल के जाते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए राधा रमन जी का। विशेष करके इनका जो सेवा पूजा का जो पद्धति है जो स्टैंडर्ड है ना बहुत हाई है। गोपाल भट्ट गोस्वामी बाद ने राधा रमन की सेवा पूजा के लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाए थे और जो रूल्स और रेगुलेशन आज भी पालन किया जा रहा है। प्रभुपाद जी जब इस मंदिर में जाके दर्शन करते थे राधा रमन जी का तो राधा रमन जी के पास खड़े होके अपने भक्तों को बोलते थे कि हमको हमारे मंदिरों में यहाँ का जो स्टैंडर्ड है वही पालन करना है। क्यों? क्योंकि राधा रमन जी का जो स्टैंडर्ड है और वही हमको अपने मंदिर में करना है, क्योंकि वहाँ पे राधा रमन मंदिर का ये विशेषता है कि आज तक कोई एक भी ज्वेलरी गुम नहीं हुआ है, सोचिए कोई मिसिंग नहीं हुआ, बिल्कुल मिसिंग नाम का, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इतना सिस्टम बनाया था, मतलब जैसे कि डेली ड्रेसिंग के लिए भी ना अगर एक ज्वेलरी से है ना तो चार लोग के पास चाबी होता था उसका, जहाँ पे ज्वेलरी रखा गया ना चार लोग का, जब तक चार लोग उपस्थित नहीं रहेंगे तब तक ज्वेलरी नहीं निकाल सकते हैं और उसके बाद निकाले भी तो कौन बना रहा है वो साइन करना, बहुत सारे रूल्स का ये करके पालन करके वो मिलता था, फिर बाद में सेवा करके वापस रखा जाता था। तो बहुत सुंदर तरीके से सिस्टम बनाया था विशेष करके विग्रह सेवा पूजा के लिए और यही चाहते थे प्रभुपाद जी कि हमारे मंदिर में भी ऐसा हो, इसलिए प्रभुपाद जी ने विशेष इस्कॉन मंदिर में सेवा पूजा के लिए बहुत स्टैंडर्ड बनाया। अभी तक आप लोग हमारे मंदिर में जो देख रहे हैं ना अभी तक वो 50% भी नहीं है, हम धीरे 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 एक एक चीज़ें स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं समय के अनुसार धीरे 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 कर रहे हैं एक एक करके, लेकिन एक्चुअली में पूरा इस्कॉन संस्था पूरा फेमस है शिव विग्रह की सेवा करने के लिए, ऐसा सेवा पूजा कहीं पे भी नहीं होता है और कोई भी संस्था में ऐसा सेवा पूजा विग्रह का नहीं होता है जिस प्रकार से इस्कॉन के अंदर होता है और ये प्रभुपाद जी ने ऐसा किया है स्थापना और ये जो चीज़ें लिया है ये राधा रमन मंदिर से लिया है प्रभुपाद जी ने ये स्टैंडर्ड। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बहुत सुंदर तरीके से इस स्टैंडर्ड को बनाया और फिर उनके भी कुछ लोग को उन्होंने वहाँ पे स्थापित किया जो कि उनकी ही परंपरा, उनके एक शिष्य थे गोपीनाथ पुजारी और उनके गोपीनाथ पुजारी ये जो कि ब्रह्मचारी थे
इसलिए उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इनको वहाँ का मुखिया नहीं बनाया, लेकिन उनके जो भाई थे दामोदर दास करके, दामोदर दास उनको, वो गृहस्थ थे और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको रखा कि आप बहुत सुंदर तरीके से गोपाल भट्ट ये राधा रमन जी का सेवा करना है। और वही दामोदर दास का जो परंपरा है ना, आज तक वो राधा रमन जी का सेवा पूजा करते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से राधा रमन जी का प्राकट्य हुआ और फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उन विग्रह को स्थापना किया और बहुत सुंदर तरीके से सेवा पूजा चलने लगा। अभी एक विशेष चीज़ जो आप लोग के लिए मैं पहले बता देता हूँ कि ये होमवर्क रहेगा अगली बार के लिए, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, पूरे वेद और शास्त्रों में एक्चुअली हम सारे वैदिक ज्ञान को, जितने भी पुराण, गीता, भागवत, जितने भी ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, हम इनको तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, तीन भाग में। वह कौन सा भाग है? संबंध ज्ञान है ना, इसके बारे में कौन कौन लोग सुने हैं? तीन ज्ञान के बारे सुने हैं, ठीक है। तो संबंध ज्ञान, और दूसरा क्या है? अभिधेय ज्ञान, और तीसरा प्रयोजन। ये तीन, अभी ये राधा रमन जी का चर्चा हो रहा है ना, इससे लिंक है एक्चुअली, इसलिए मैं इस तीन ज्ञान को बताने जा रहा हूँ, है ना, जो कि सारे वेद पुराण इसी के अंतर्गत आते हैं, इसी तीन ज्ञान के अंदर। संबंध मतलब क्या है? हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है, ठीक है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, है ना, क्या संबंध है भगवान के साथ? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, है ना, ये हमारा संबंध है, है ना, हम कृष्ण के नित्य दास हैं, ये हमारा संबंध है, है ना, कि हम कृष्ण के दास है, है ना। तो कृष्ण के दास होने के कारण हमको क्या करना चाहिए? हमको ये संबंध ज्ञान हो गया कि हम क्या है? कृष्ण के दास हैं, है ना, ये ज्ञान हमको हो गया है, तो हमको क्या करना चाहिए फिर? सीधी सी बात है, हम किसी कंपनी को ज्वाइन किए तो हमको पता चला हमारा ये बॉस है, तो हमको क्या करना चाहिए फिर? वो व्यास बॉस का तो सेवा करना पड़ेगा ना, उनका बात को सुनना पड़ेगा, है ना, जो भी है उसके अंडर में काम करना पड़ेगा, ऐसा। तो संबंध ज्ञान मतलब हमारा और भगवान के बीच में क्या संबंध है, है ना, ये संबंध ज्ञान, है ना, कृष्ण जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, है ना, ये हमारा संबंध है। तो जब इस संबंध को हम जान गए कि कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है, हम दास हैं, तो एक जब दास समझ गए तो हमको क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा पूजा करना चाहिए। जब ये सेवा करने लगते हैं तो ये क्या, कौन सा ज्ञान कहलाता है? अभिधेय ज्ञान, है ना, जब सेवा स्टार्ट कर सकते हैं, करते हैं तो अभिधेय। और जब ये सेवा करते करते अंतिम में हमको क्या प्राप्त होता है? प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, जो कि हमारे जीवन का, एक मनुष्य के जीवन का जो उद्देश्य है वह कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, है ना। तो इस कृष्ण प्रेम की प्राप्ति जो है वह क्या है? प्रयोजन। प्रयोजन मतलब कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, है ना। तो संबंध ज्ञान, संबंध ज्ञान जो है इसके जो आचार्य है कौन है, किसी को मालूम संबंध ज्ञान के आचार्य कौन है? सनातन गोस्वामी बात, है ना। और उनका प्रणाम मंत्र क्या है? नहीं नहीं, ये अपना संबंध ज्ञान के जो आचार्य है वो सनातन गोस्वामी पाद, और उनके विग्रह कौन से हैं? राधा मदन मोहन। और राधा मदन मोहन का प्रणाम मंत्र क्या है? जयताम सुरतो पंगो ममंदा मतिर्गति मत सर्वस्व पदाम भोजो राधा मदन मोहनम। तो ये कहाँ पे? हमारा मंगलाचरण में आता है, ये तीनों श्लोक आएगा मंगलाचरण में, है ना। तो संबंध ज्ञान जिस किन, उनके आचार्य कौन? सनातन गोस्वामी पाद है। उनके विग्रह कौन? राधा मदन मोहन जी। और उनके प्रणाम मंत्र क्या? जयताम सुरतो पंगो ममंद मतिर्गति मत सर्वस्व पदाम भोजो राधा मदन मोहन। एक पंगु से पंगु व्यक्ति भी पहाड़ को पार कर सकता है मदन मोहन की कृपा से, है ना। किस प्रकार से? मदन मोहन जी ने कृपा जस्ट किया तो जो व्यापारी का नाव फंस गया था यमुना में, उसका नाव निकल पड़ा, जिसने बाद में मदन मोहन मंदिर को बनाया। ये कथा पिछली बार हमने सुना था, है ना। सनातन गोस्वामी बात के इसमें। तो ये जो संबंध ज्ञान के अधिष्ठाता देव कौन से हैं, हमारे संबंध ज्ञान के अधिष्ठाता देव राधा मदन मोहन, जिनके आचार सनातन गोस्वामी पाद, ठीक है। और ये राधा मदन मोहन जी जो कि वृंदावन में, पूरे वृंदावन में के ऐसे विग्रह हैं जिनके चरण कमल बहुत सुंदर हैं, है ना। पूरे वृंदावन में जितने भी विग्रह है सबकी तुलना कर लिया जाए तो चरण कमल किसके सुंदर है, राधा मदन मोहन के चरण कमल बहुत सुंदर है। इसलिए कभी जब भी हम राधा मदन मोहन जी का दर्शन करते हैं तो आप उनके चरणों को ध्यान से देखिए कितने सुंदर है, इस चीज को ध्यान में, क्योंकि हमको ये ध्यान रहेगा, ये ज्ञान रहेगा ना, हम दर्शन भी उसी प्रकार से करेंगे, है ना। तो संबंध ज्ञान के अधिष्ठाता जो देव है वो कौन है, मदन मोहन जी है। और उनके चरण कमल जो है, उनकी विशेषता यह है कि उनके चरण कमल बहुत सुंदर है, है ना। और दूसरा ज्ञान कौन सा है, अभिधेय। और इनके अधिष्ठाता देव कौन है, गोविंद देव इनके अधिष्ठाता देव। और इनके आचार्य कौन है, शील रूप गोस्वामी पाद, है ना। और ये गोविंद देव की विशेषता यह है, गोविंद देव के विग्रह की विशेषता यह है कि इनके जो वक्ष स्थल है बहुत सुंदर है, है ना। ये तीनों विग्रहों की तीन विशेषता है, इसलिए जब हम तीनों ये विग्रहों का जब दर्शन करेंगे ना, हमको ये बात को ध्यान में रखना चाहिए। मदन मोहन जी का चरण सुंदर है और गोविंद देव का वक्ष स्थल सुंदर है, और तीसरे कौन है, गोपीनाथ, जिनका की मुख कमल बहुत सुंदर है, है ना। तो अभिधेय, जिनके अभिधेय ज्ञान, जिनके अधिष्ठाता देव कौन, गोविंद देव। और इनका जो आचार्य जो है वो कौन है, रूप गोस्वामी पाद, है ना। रूप गोस्वामी पाद के विषय में भी कभी सुनेंगे किस प्रकार से उन्होंने गोविंद देव का प्रकट किया, है ना। सर गोस्वामी में ये सब आ जाएंगे, और जब भी हम किसी गोस्वामी को चर्चा करेंगे तब उनके अधिष्ठाता देव की भी चर्चा करेंगे, है ना, और उनसे संबंधित, क्योंकि हमको वो चर्चा करना ही पड़ेगा ऐसा। तो अभिधेय ज्ञान जो कि जिनके अधिष्ठाता देव गोविंद देव और आचार्य रूप गोस्वामी पाद, और जिनके वक्ष स्थल बहुत सुंदर है ना। और तीसरा ज्ञान कौन सा है, प्रयोजन, मतलब कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। और अच्छा, गोविंद देव का प्रणाम मंत्र बताइए, दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमत् रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शील गोविंद देव पृष्ठाल विशेव्यमानो स्मरामि, है ना। ये गोविंद देव का प्रणाम मंत्र है, तभी मैं होमर के रहेगा, इसलिए मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ, होमर के रहेगा। हाँ, कौन से विग्रह, कौन से उनके आचार कौन से, ये सारी चीजें मैं अगले क्लास में पूछूंगा। तो अभिधेय ज्ञान जिनके आचार्य रूप गोस्वामी पाद, और अधिष्ठाता देव गोविंद देव, और प्रणाम मंत्र, ठीक है। और तीसरा जो है प्रयोजन, मतलब कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, है ना, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। और जिन्हों इनके आचार्य कौन है, इनके आचार्य कौन है, विग्रह कौन है बताइए, चलो गोपीनाथ, है ना, गोपीनाथ जी जिनके आचार्य है रघुनाथ दास गोस्वामी। प्रयोजन मतलब अंतिम फल, है ना, हमारा जो उद्देश्य है कृष्ण की प्राप्ति। देखिए सारा वैदिक ज्ञान इन तीनों के अंदर आ गया, है ना, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, है ना। हम सारे ज्ञान को कितना भी अर्जित कर ले, लेकिन ये तीनों के अंदर ही आता है, हाँ, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। और अंतिम जो है वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। और इनके जो आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी, और विग्रह जो है वो गोपीनाथ जी है, और प्रणाम मंत्र क्या है, श्रीमान रास रसारंभी वंशी वटत तष्टिता, हाँ, वंशी वट के पास, है ना, श्रीमान रास रसारंभी वंशी वटत तष्टिता कर्षण वेणु सुनेर गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तुना। जो सारे गोपियों के साथ उन्होंने रास को रचाया था, वो स्थान भी है, वंशी वट भी है, गए वंशी वट कोई, है ना, जहाँ पे एक साथ में सारे गोपियों के साथ भगवान ने रासलीला किया था। तो इनकी विशेषता क्या है, इस विग्रह का विशेषता क्या है, इनका जो मुख कमल है बहुत ही सुंदर है। मदन मोहन जी का चरण बहुत सुंदर, गोविंद देव का वक्ष स्थल बहुत सुंदर, और गोपीनाथ जी का मुख कमल बहुत सुंदर। लेकिन एक बात को ध्यान में रखिए कि ये जो तीनों चीजें, तीनों जो सुंदरता है ना, ये तीनों चीज हमको राधा रमन जी का दर्शन करने के प्राप्त है, एक में मिलता है। राधा रमन जी का आपके चरणों का दर्शन करेंगे तो आपको राधा मदन मोहन जी का दर्शन का फल प्राप्त होता है, और उनके नाभि का दर्शन करते हैं तो गोविंद देव का दर्शन करने का फल प्राप्त होता है, और उनके मुख कमल को दर्शन करते हैं तो गोपीनाथ जी के दर्शन का फल प्राप्त होता है। इसलिए कभी कभी इन तीनों मंदिर पर नहीं जा पा रहे तो राधा रमन जी का दर्शन करके निकल जाना चाहिए, कम से कम राधा रमन जी का दर्शन करना ही चाहिए, है ना, क्योंकि ये तीनों तीन जगह पे है। हो सकता है कि वृंदावन एक ही दिन के लिए गए और नहीं पहुंच पाए सब जगह, तो एटलीस्ट राधा रमन जी का तो दर्शन करना ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम अगर राधा रमन जी का दर्शन करते हैं तो हमको तीनों विग्रह जो इम्पोर्टेंस विग्रह है वो उनका फल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हमारे मुख्य मूल विग्रहों में से राधा रमन ही विग्रह है। मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, गोविंद सब लोग कहाँ चले गए? जयपुर। जयपुर मूल विग्रह वहां पे है, लेकिन अभी भी वृंदावन में जो दर्शन करते हैं ना वो प्रतिभू विग्रह है। प्रतिभू विग्रह मतलब उस विग्रह के बदले जो स्थापित किया गया बाद में, उस विग्रह को प्रतिभू विग्रह बोलते हैं। प्रतिभू मतलब वर्जिनल विग्रह जो है, इस प्रतिभू विग्रह में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम मूल विग्रह का जयपुर में दर्शन करेंगे तभी हमको फल प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए आचार्यों ने इसका नाम दिया प्रतिभू विग्रह। प्रतिभू विग्रह का अगर दर्शन हम करते हैं तो हमको मूल विग्रह के दर्शन का ही फल प्राप्त होता है। तो बाद में एक प्रतिभू विग्रह बाद में स्थापित किया गया है ना, और उनका दूसरे मंदिर में, हर जगह पे दूसरा मंदिर है, आपने देखा होगा। जैसे कि गोविंद देव का मंदिर है, टूट गया है, टूट गया है ना, बहुत विशाल था। मदन मोहन का मंदिर इतना विशाल था कि वो दिल्ली तक दिखता था। मुगलों ने आक्रमण किया तो सब तोड़ दिया ना, तो तोड़ दिया, तो टूटे हुए मंदिर में भगवान को वापस स्थापित नहीं किया था, विग्रह को तो शिफ्ट कर दिया, मंदिर तोड़ दिया। मंदिर तोड़ दिया तो प्रतिभू विग्रह भी स्थापित करेंगे तो टूटे हुए मंदिर में नहीं स्थापना कर सकते हैं। इसलिए मदन मोहन जी का जो मंदिर है ना, वो अभी जो मंदिर हम देखते हैं उसके अंदर एक्चुअली विग्रह की स्थापना नहीं की गई है आचार्यों के द्वारा, और उनके उसके अंदर विग्रह है लेकिन उनकी सेवा पूजा नहीं होती। रखते हैं विग्रह, वहाँ के ब्रजवासी लोग रखते हैं लेकिन वो सेवा पूजा नहीं होता है। और प्रतिभू विग्रह जो स्थापित किया गया है ना, वो थोड़े दूरी पे प्रतिभू विग्रह है, वहाँ पे दूसरा मंदिर बनाया गया और वहाँ पे स्थापना किया गया, क्योंकि टूटे हुए मंदिर में भगवान के विग्रह को नहीं रह सकते हैं, नहीं सेवा पूजा कर सकते हैं। तो तीनों मंदिरों को ऐसा ऐसा किया गया। गोविंद देव के भी मंदिर के पीछे प्रतिभू विग्रह है। कभी कभी क्या है ना, मालूम नहीं रहता ना, वो उधर ही दर्शन करके आ जाते हैं, लेकिन ये हमारे गौड़िया वैष्णव ही जाते हैं ज़्यादातर प्रतिभू विग्रह का दर्शन करने के लिए। और मैं तो जितनी बार भी गया, मैं तो ये मंदिर में गया ही नहीं, प्रतिभू विग्रह का दर्शन किया और निकल गया। और उसमें जाके क्या फ़ायदा, अभी वो तो भगवान जी ही नहीं, उधर सेवा पूजा ही नहीं होता है। ऐसा हम दर्शन करते हैं मंदिर का, इस प्रकार से एक्सप्लोरमेंट करते हैं, लीलाओं का किस प्रकार से कैसा तोड़ा होगा मुगलों ने इतना बड़ा मंदिर को, है ना। वहाँ पे एक नीचे गोविंद देव के नीचे ना, वहाँ पे एक हनुमान जी है ना, शंख कुछ तो नाद, कौन सा नाद है, बहुत गर्जना किया था, उनसे सहा नहीं गया था एक्चुअली हनुमान जी को। मंदिर तोड़ रहे थे ना, बिल्कुल सहन नहीं कर पाए, और उन्होंने बहुत गर्जना ऐसा किया ना, जितने भी तोड़ रहे थे चढ़ के ना सारे गिर के नीचे घायल हो गए, इतना जोर से गर्जना किया। वो हनुमान जी का भी विग्रह है वहाँ पे आज ऐसा। तो इस प्रकार से मुगलों के आक्रमण से मूल विग्रह तो चले गए, लेकिन राधा रमन जी का विग्रह जो है वो आज भी वृंदावन में हमको दर्शन देते हैं राधा रमन जी। तो इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बहुत सारे, उन्होंने कुछ हरिभक्ति विलास इन और बहुत सारे ग्रंथों का भी संपादन किया, मतलब तो इन दूसरे जो आचार्य थे गोस्वामी, उन लोगों ने लिखते थे और ये संपादन करते थे, और विशेष करके फिर उन्होंने इन ग्रंथों का वितरण किया है ना। तो इनके इनके एक शिष्य थे जो नवदीप से आए थे, जिनको उन्होंने दीक्षा दिया, एक्चुअली दीक्षा वो दे नहीं रहे थे, तो जो उनका जो ये शिष्य था ना, उन इतना सरेंडर था उनके प्रति ना कि उनको दीक्षा देना ही पड़ा,
मतलब वो बहुत ही ज्यादा सरेंडर था उनके प्रति, लेकिन उन्होंने दीक्षा कैसे दिया, वो दामोदर, भगवान दामोदर के सामने लेके, क्योंकि दामोदर मंदिर में रहते थे ना, दामोदर के सामने लेके गए, बोला कि अभी ये तुम्हारे आपके दास है, ये आपकी सेवा पूजा कर रहा है, और ऐसा करके उन्होंने दीक्षा दिया उनको। फिर बाद में क्या हुआ कि क्या उनका नाम था, मैं भूल रहा हूँ, श्रीनिवास, श्रीनिवास आचार्य, तो श्रीनिवास आचार्य जो इनके शिष्य हुए, श्रीनिवास आचार्य जो कि इनसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन की प्रथा प्रारंभ हुई थी। बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी ने शुरू किया, प्रभुपाद जी ने ये पहले से चलती आ रही बुक। श्रीनिवास आचार्य ये तीन भक्त ऐसे थे, श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य, ये तीनों जीव गोस्वामी के अंडर में रहकर भागवत को सीखते थे, भागवत पढ़ते थे, और तीनों ये विशेष थे। श्यामानंद प्रभु को स्वयं राधा रानी ने दर्शन दिया, उनको नुपुर प्राप्त हुआ, डेली वो सेवा कुंज में झाड़ू मारते थे, है ना, दामोदर मंदिर के पीछे सेवा कुंज है, वहाँ पे वो डेली झाड़ू मारते थे, और झाड़ू मारते मारते उनको नुपुर प्राप्त हुआ था। नुपुर प्राप्त हुआ था तो उन्होंने नुपुर को लेकर रख लिया, और दूसरे दिन वो मांगने के लिए दो लड़कियाँ आई उनके पास कि आपको नुपुर मिला झाड़ू मारते समय, वो नुपुर दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैं किसका है नुपुर, बोला मेरी सहेली का है, तो बोला कि तुम्हारी सहेली को भेजो, तुमको नहीं दूंगा। और फिर बाद में उनको राधा रानी ने दर्शन दिया था एक्चुअली। तो बहुत विशेष, श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य भागवत सीखते थे जीव गोस्वामी पाद के अंडर में रह के, और ये श्रीनिवास आचार्य ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन के आचार्य है ना, बैलगाड़ी में बुक्स को लोड करके वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेके जाते थे ऐसा। तो ये परंपरा जो चल रहा है ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, वो श्रीनिवास आचार्य से चल रहा है ऐसा, किस प्रकार से वो करते थे। तो इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी जो कि उनके द्वारा प्रकटित विग्रह ये राधा रमन जी, जो कि आज उनका बहुत सुंदर तरीके से सेवा पूजा हो रहा है, वो ये नित्य भगवान के नित्य लीला में अनंग मंजरी के रूप में वो सेवा करते हैं, और जिनका कि आज तिरुभाव तिथि है ना, समय हो गया है ना तो जिनका आज तिरुभाव तिथि है, तो आज के दिन में हमको ये स्मरण करना, ये कृपा याचना करना चाहिए कि आपने उनके पूरा जीवनी के बारे में सुना, अभी कैसा उनका जीवनी रहा, किस प्रकार से बचपन से ही उनके ऊपर चेतन महाप्रभु की कृपा रही, तो उस जीवनी को याद करते हुए हम उसके उनके बारे में उनके दिन पे इसलिए चर्चा करते हैं कि उनके जीवनी के बारे में जब याद करेंगे तो हम उनसे उस प्रकार की कृपा याचना मांगेंगे, कृपा करेंगे आप हमारे ऊपर कि एक बूंद मात्र भी, अभी चेतन महाप्रभु के ऊपर उनका कितना कृपा था, अगर उसमें से उस कृपा का एक बूंद लेस मात्र भी अगर हमको मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो इसलिए हमको विशेष करके आचार्यों का तिरुभाव या आविर्भाव, एक्चुअली देखिए तिरुभाव और आविर्भाव, आचार्यों का तिरुभाव जो है वो भी खुशी का दिन है और आविर्भाव भी खुशी का दिन है, लेकिन भौतिक जगत में, भौतिक संसार में कैसा होता है, जो मृत्यु का दिन होता है वो शोक समय मनाते हैं, और जो जन्म का समय होता है उस समय खुशियाँ मनाते हैं, है ना, ऐसा है। लेकिन आचार्यों जो हमारे आचार्य हुए ना, उनका हम जो हम जन्म मृत्यु तो शब्द यूज ही नहीं कर सकते उनके लिए, उनका आविर्भाव होता है और तिरुभाव होता है। तो तिरुभाव होता है ना, इसलिए हमको एक खुशी है, हम खुश होते हैं, फिस्ट भी मनाते हैं, है ना। दुख इस बात का है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो अपने नित्य लीला में पहुंच चुके हैं। लेकिन हम जब भी उनके बारे में सुनते हैं, उनका ग्लोरीज करते हैं, तो वो गोलोक धाम से भी हमको आशीर्वाद दे सकते हैं, है ना, वो आज भी हैं और देख रहे हैं, है ना। तो हम कृपा याचना करेंगे तो गोलोक धाम से हमको आशीर्वाद दे सकते हैं। इसलिए आविर्भाव और तिरुभाव में कोई अंतर नहीं है आचार्यों के, है ना, हमको दोनों बहुत सुंदर तरीके से मनाना चाहिए, है ना। तो इसलिए आज के दिन में हमसे इस प्रकार का हम उनसे कृपा याचना करना चाहिए कि जिस प्रकार से उनका भगवान राधा रमन जी के चरणों में जिस प्रकार से अटूट श्रद्धा थी, और किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का जो कृपा उनके ऊपर हुआ था, उसमें से एक लेश मात्र भी अगर हमको प्राप्त हो, हम हमारे जीवन सफल हो सकता है, हम हमारे अंदर भी ये कृष्ण भक्ति का जो है प्रेम उदय हो। एक्चुअली कृष्ण प्रेम जो है ना, हर एक भौतिक आवादिक व्यक्ति के भी अंदर कृष्ण प्रेम है। एक्चुअली चैतन्य चरितामृत में इस बात का प्रमाण है कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, ऐसा श्लोक है कि हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य के अंदर ना उसके हृदय में कृष्ण प्रेम है। एक्चुअली कृष्ण प्रेम अलग से कहीं प्रकट करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कि हम भक्ति कर रहे हैं करते करते हो गए फिर बाद में कृष्ण प्रेम प्रकट, एक्चुअली अलग से नहीं होता है। एक्चुअली हर एक जीव के अंदर ना नित्य सिद्ध है, नित्य रूप से हर एक जीव के अंदर कृष्ण प्रेम है, लेकिन कैसे उसको करना प्रकटे, श्रवण कीर्तन है ना, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, उसको उदय करना है। वो कैसे उदय होगा, श्रवण कीर्तन से उदय होगा। भगवान कृष्ण के बारे में सुनने से है ना, उनकी लीला कथाओं के बारे में सुनने से हाँ, जब साधना भक्ति करने से वो क्या होता है, उदय होता है ना। हम जितना सीरियसली इस मार्ग को लेंगे, जितना मतलब लगेंगे उसमें बहुत सीरियस होके, जितना दृढ़ता से लेंगे ना, उतना ही जल्दी ये जो प्रेम है ना वो उदय होता है धीरे धीरे, है ना। इसलिए कहीं और से प्रकट करने की, कहीं और से लाएंगे ऐसा ऐसा नहीं है, हमारे अंदर है। तो इसलिए हम आचार्यों और गुरुजनों से इसलिए कृपा याचना करते हैं, अगर उनका एक लेश मात्र भी कृपा हो गया तो ये हमारी जो भक्ति जो अंदर है सुप्त रूप से तो जागृत हो जाएगी, है ना। तो आज के दिन पे हम ये उनसे कृपा करते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की जय, राधा रमन देव की जय, हरे कृष्णा। मधुरा बोले किसका कोई प्रश्न है तो मेरे से पूछिए। होमवर्क यही है कि वो तीन ज्ञान के विषय में मुझे जानना है, और अगली बार उनका प्रणाम मंत्र प्रणाम मंत्र एटलीस्ट इतना बोलेंगे कि हाँ जयताम शुरू तो पंगों से शुरू होता है, और दूसरा जो है दिव्य वृंदावन से शुरू होता है, याद नहीं होता इतना, क्योंकि हम याद करने के लिए अभी मंगलाचरण बोल रहे हैं, धीरे धीरे याद हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। इतना तो मालूम होना चाहिए कि है ऐसा ऐसा है ना, हाँ कौन उनके आचार्य कौन है और उनके प्रतिष्ठित विग्रह कौन है और उन विग्रहों की विशेषता क्या है ना, ये हमारा नेक्स्ट बार का होमवर्क रहेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ में जो अधूरा रह गया होमवर्क, मतलब पहला और दूसरा श्लोक, उसको पूरा करें, है ना, ठीक है। संक्षेप में बताया है, एक्चुअली इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े सेमिनार है, वो बहुत विशेष चीज हमारे जो है,
वो भी यही घर पे ही
तो मंदिर में भी चला था, जो संडे का है ना उसमें भी वो इसमें दिखाया था, तो हमने
मैंने एक्चुअली क्या है इन विग्रहों को लेकर समझाया ना, इसलिए थोड़ा क्लियर हुआ है। ये और भी डिटेल में है एक्चुअली, जब जैसे कि मान लीजिए अभी गोपीनाथ जी है, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी का ना सारे आचार्य, कितना पास्ट टाइम उनका राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य कराया, क्या क्या कितने पास्ट टाइम्स है, जब ये सब सुनेंगे तो ये जो संबंध अभिधेय प्रयोजन है ना और अच्छे से क्लियर होगा। एक्चुअली ये तो उससे रिलेटेड है, इसलिए मैंने थोड़ा से बताया इसके बारे में ऐसा, लेकिन और भी डिटेल में इसका हम कर सकते हैं, और विशेष करके इन आचार्यों के विषय में जब जानेंगे ना ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
ऐसा
ठीक है, हरे कृष्ण। 9:30 बज गया, सब अलग अलग ग्रंथों में है, चैतन्य चरितामृत में भी है, चैतन्य चरितामृत में हाँ मुझे हाँ उसी में है। साधना चार्ट थोड़ा सा साधना वाला जो है ना सबको मेंटेन करना है, मैं वो अगली बार प्रिंट आउट लाऊं। एक्चुअली बुक्स है क्या सबके पास, बताओ। 1 ईयर का ही था, मतलब भरा है कोई
खाली है तो खाली वो अगर खाली है तो 17 का 18 कर दीजिए तो उसको कंटिन्यू करते हैं। भरा है कि नहीं भरा है? नहीं भरा है, खाली है। अगर खाली है, खाली है तो उसको 17 को 18 कर दीजिए।